તારીખ 30/12/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 15 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 68
પરમાગમ આરી જીવ અધિકાર કે 15 ગાથા આત્માનુભવ કી વિધિ कैसी होती है। आचार्य महाराज यहाँ इस बात को दर्शाते हैं कि जो शुद्धात्मा का अनुभव है वो वास्तव में तो अपने ज्ञान का अनुभव है। लक्ष्य शुद्धात्मा पर होने से उनको शुद्धात्मा का अनुभव भी कहते हैं और उसको ज्ञानानुभूति भी कहते हैं। ऐसा जो अनुभव है वो अनुभव की दशा पवित्र निर्दोष निर्मल होने से वो पूजनीय है वंदनीय है। और आचार्य भगवंत ने तो उसी को ही समस्त जिन शासन कहा है। सारा जिन शासन इसमें समाविष्ट है। ऐसे द्रव्य रूप जिन शासन तो जितना श्रुत ज्ञान है बाह्य में द्रव्य श्रुत है उतना जिन शासन है, लेकिन भाव में तो अभ्यंतर जो ये ज्ञानानुभूति रूप दशा है वही समस्त जिन शासन है। क्यों के द्रव्य स्वरूप में अनुभूति करने का ही विधान है। राजमल जी ने वो 13 कलश मान लिया है कि 12 अंग तो विकल्प रूप है, ये कोई अपूर्व लब्धि नहीं ऐसा कहा, उसका मूल्य नहीं ले रखा क्योंकि द्रव्य स्वरूप है बाह्य है। और उसमें भी अनुभूति आत्मानुभूति करने का ही विधान है, इसलिए इसका मूल्य अधिक है। बारंग का सार आत्मानुभूति करना वो है, आत्मानुभूति कराने के लिए वो बारंग का निरूपण किया। प्रयोजन तो उतना है, जिसने इस प्रयोजन को साध लिया उनको 12 अंग का सार मिल गया, उनको फिर शास्त्र पढ़ने का बंधन नहीं है। अनुभूति वाला जीव नित्य स्वाध्याय करता है कि नहीं करता है इसका बंधन उसको लागू नहीं पड़ता। अटक नहीं है उसको। हाँ तेरा कलश का उपोद्घात में तो बात बताया, उनको तो 15 गाथा ख्याल में है ना। 13 गाथा की टीका करने वाले पंडित जी को 15 गाथा का विषय ख्याल में है कि खुद आचार्य भगवंत ने कितनी महिमा की। मूल गाथा में कौन कौन भगवान ने वो बोले कि वो जिन शासनम सबम, वो समस्त जिन शासन है। अब कहते हैं कि ऐसी अनुभूति किस विधि से किस कार्य पद्धति से होती है। परंतु अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। क्या कहा कि जो ज्ञान सामान्य है ज्ञानाकार ज्ञान है उसका आविर्भाव करने में आवे, आविर्भाव करना मैंने उसमें भावान्वित होने में आवे, उसमें भावान्वित हो जाए। और जो विशेष ज्ञाकार ज्ञान है उसको गौण कर दे, उसका दुर्लक्ष कर दे, तो किसका अनुभव होगा? कि ऐसे करने से ज्ञान मात्र का अनुभव होता है, मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अनुभव होता है। क्या ऐसा अनुभव होता है? ज्ञान मात्र में, ऐसे अनुभव में, इस ऐसे अनुभव को ही अनुभव अनुभूति कही है। फिर भेद से उसको द्रव्य की या आत्मा की अनुभूति कहो, या भेद से उनको ज्ञानानुभूति कहो, ये दोनों भेद है। निर्भेद लेवे तो ज्ञान मात्र का अनुभव, यही अनुभूति है। तो ये ज्ञान मात्र का अनुभव कैसे होता है? कि सामान्य का आविर्भाव होवे और ज्ञाकार विशेष ज्ञान का तिरोभाव होवे। बहुत जो रहस्यपूर्ण बात है अनुभूति की, वो 15 गाथा में खुली गई है। ये ज्ञानियों के अंतर परिणमन का रहस्य है। शब्दार्थ, नयार्थ, भावार्थ जाना है, रहस्यार्थ जानना चाहिए। क्या बिना रहस्यार्थ ये सब अर्थ है, वो अर्थ नहीं है किंतु अनर्थ है। अनर्थ इसलिए कि अहम बुद्धि हो जाती है, इसलिए अनर्थ है। आगरा में तो चली है, बहुत चली है, लेकिन आप वहाँ व्यस्त बहुत रहते ना, वहाँ क्या है, बोझा बहुत रहता है, तो वहाँ तो अब बुलाना ही मत, आप इधर आ जाना। क्योंकि वहाँ सब काम का बोझा में व्यवस्था सब करनी पड़े, तो उतना उपयोग नहीं लगे, उपयोग डाइवर्ट हो जाता है। ये मंत्र ही है, सारा समय सार का ये मंत्र है। अगर 415 गाथा जो समय सार की है, उसको एक शब्द में कहना है, तो ज्ञान मात्र में आ जाता है वो समय सार। समय सार मैंने ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र मैंने समय सार। न उसमें द्रव्य की कल्पना करना, न उसमें गुण भेद की कल्पना करना, न उसमें पर्याय की कल्पना करना। ऐसे ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है, तब अपना स्वसंवेदन है वो प्रकट अनुभव में आता है। तो अब उसकी विधि को खोलेंगे। तो अज्ञानी के दशा से वो बात करेंगे कि आविर्भूतपणा और तिरोभूतपणा कैसे होता है, और ज्ञानी की दशा से बात करेंगे कि आविर्भूतपणा और तिरोभूतपणा ज्ञानी को कैसे हैं। दोनों को होता है, एक का होता है तो दूसरे का, एक का आविर्भाव में दूसरे का तिरोभाव है। तो पहले अज्ञानी की बात करेंगे कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी है इसका मतलब क्या है? कि ज्ञेयों में आसक्त है। ज्ञेयों में क्यों आसक्त है? कि उसमें उसको सुख का निश्चय है, ज्ञेयों में सुख का निश्चय है, ज्ञेयों में सुख बुद्धि होने से ज्ञेय की आसक्ति जीव मिटा सकता नहीं। उसमें सुख की वास्तव में तो कल्पना है, लेकिन उनको जो है वो सही सुख दिखता है, लगता है, तो उनकी जो सुख बुद्धि है, सुख का अभिप्राय है, वो इनके नयाकार ज्ञान को तिरोभूत नहीं होने देता। क्यों? अज्ञानी को नयाकार ज्ञान, मैंने बाह्य ज्ञान आविर्भूत रहता है, तो बाह्य ज्ञान में भावान्वित क्यों रहता है? कि सुख बुद्धि के कारण, सुख बुद्धि के कारण आसक्त है, आसक्त होने से उनको बाह्य में खींचाव है, वो बाह्य में खींचा रहता है, तो वो अंतर्मुख हो सकता नहीं है। जिसको अंतर्मुख होना चाहिए वही अंग बाह्य में खींचा रहता है। या तो वो अंतर्मुख रहे या तो वो बहिर्मुख रहे, दो जगह तो रह नहीं सकेगा, पूर्वापर विरोध है। इसलिए संजोग निराकार ज्ञान में आसक्त है उन्हें वह स्वाद में नहीं आता, उन्हें ज्ञान का स्वाद नहीं आता। जो ज्ञान सामान्य है उनका स्वाद उनको नहीं आता, अपने में होते हुए भी। ये लक्ष्य पर तो सभी क्रिया होती है, जैसे सुनते हैं तो कान को तो ढक्कन नहीं है फिर भी लक्ष्य चला जाता है दूसरी जगह तो सुनते नहीं है, सुनने में आता हुआ भी सुनाई देता नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। वैसे वो ज्ञान सामान्य होते हुए भी और उसमें वेदन होते हुए भी उसको कल्पना होती है कि मैं पर पदार्थ को वेदन करता, ऐसी कल्पना हो जाती है, वो भ्रांति है। ज्ञान में ज्ञान सिवा भी दूसरा वेदन होने का कोई अवकाश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी बात है। वो तो है ही, लेकिन लक्ष्य नहीं के प्रति सुख बुद्धि के कारण है तो उसका वेदन अनुभव में आता नहीं है। यह उसका स्वाद नहीं आता, यह बात प्रगट दृष्टांत से बतलाते हैं। यह बात दृष्टांत से कहते हैं कि जैसे अनेक प्रकार के साग आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है, जो कैसा है अनुभव में, अनुभव में वो लवण आता है कि सामान्य का वहां तिरोभाव है और शाकादि के स्वाद भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी अज्ञानी मैंने शाक लोलुप मनुष्यों को आता है। क्या बनता है, हमेशा हम लोग भोजन करते हैं तो दाल खाते हैं, साग खाते हैं और भी नमकीन जो भी है वो जिसमें नमक डाला हो ये सब पदार्थ हम खाते हैं तो हमको भिन्न भिन्न स्वाद आता है, नमक का भिन्न भिन्न स्वाद आता है। तो नमक का स्वाद तो एकिला खारा है, खारापन है वही नमक का स्वाद है, नमक का नमक में दो स्वाद है ही नहीं, लेकिन हमें अलग अलग स्वाद लगता है। दाल का स्वाद अलग लगता है, साग का स्वाद अलग लगता है, दूसरे नमकीन का स्वाद अलग लगता है। तो क्यों ऐसा हुआ कि उस भोजन में आसक्ति है इसलिए एकिला खारापन है वो भिन्न रूप स्वाद में आता नहीं है। अब देखिए इस दृष्टांत में कितना प्रैक्टिकल साइड है कि ये हमेशा समों का अनुभव है। अब खारापन की परीक्षा करना है तो क्या करना पड़ेगा कि एक किला खारापन देखने में उपयोग लगाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ 500,000 आदमी जिमने वाले हों, रसोईया को बुलाते हैं, वो तैयार कर देते हैं, भाई आपका रसोई तैयार हो गया, तो कोई एक्सपर्ट आदमी को हम कहते हैं कि तुम चखो उसको, वो चखेंगे, चखने में क्या करेगा, अपना उपयोग लगाएगा एक किला खारापन में कि नमक डाला है वो बराबर डाला है, कमी बेसी तो उसमें कुछ नहीं। तो एक किला नमक को ज्ञान में लेने का उद्देश्य अपना उपयोग की प्रवृत्ति करता है। क्या करता है वो, एकिला खारापन को स्वाद में लेने के लिए उपयोग में ऐसा उद्देश्य धारण करके वो स्वाद लेने को प्रवृत्ति करता है। तो उसको पता चल जाता है कि वास्तव में नमक ठीक है या ठीक नहीं है। उस वक्त वो साग लोलुप नहीं बन सकता। क्या ऐसे चखने वाले को साग की लोलुपता नहीं रहेगी, और जिसको लोलुपता रहेगी उसको एक किला नमक स्वाद में नहीं आएगा, दो बात साथ में नहीं बनती। ये अनुभवगम्य दृष्टांत है, युक्ति भी दृष्टांत भी अनुभव का दिया है। तो वैसे जिसको एकला ज्ञान स्वाद में लेना हो, ज्ञानानुभव करना हो, तो लोलुपता से छूटना पड़ेगा। ये कि लोलुपता से छूटे तो ही एकला ज्ञान का स्वाद ले सकता है। और गेय की लोलुपता से कब छूट सकता है? कि जब गेय में सुख का अभाव है ऐसा निश्चय हो जावे, तब तभी उसका लक्ष्य छूटे, तभी उसका निश्चय छूटे, तब उनको सुख बुद्धि छूटे। सुख बुद्धि छूटने से आसक्ति छूट जाती है, ऐसी बात है। और आसक्ति ऐसी की ऐसी रहे, गेयों में सुख बुद्धि रहे और एकला ज्ञान का अनुभव हो, ऐसा कभी बन सकता? ये अस्ति नास्ति दो बात एक साथ होनी चाहिए। आसक्ति की नास्ति होनी चाहिए, तभी ज्ञान का स्वाद की अस्ति हो सकती है, इसके पहले नहीं हो सकती। फिर से, अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध में उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव, एक इला खारापन वहां ढक जाता है और भिन्न भिन्न विशेष लवण में ने भिन्न भिन्न लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण, कि जो लवण विशेष रूप है भिन्न भिन्न रूप स्वाद में आता है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है, किंतु उनको अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद तो उसको नहीं आता, क्योंकि वो लोलुपता में पड़ा है। तो उनको एकला खारापन है, वो स्वाद में नहीं आएगा। और परमार्थ से देखा जाए तो, परमार्थ मैंने वास्तविकता से देखा जाए तो, विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रस रूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रूप लवण है। दोनों को दूसरा दूसरा तो लवण नहीं है, एक ही नमक है। कि जो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है, उसमें कोई दो दो प्रकार है नहीं, वो तो एक ही लवण है, वो दृष्टांत हुआ। ठीक इस प्रकार अब अपने में प्रयोग करना है। ये बात शब्द के माध्यम से समझाई जाती है, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोग क्या है वो करने का है। शब्द तो प्रयोग सिखाने के लिए है। सिर्फ शब्द को मुखाग्र कर लें या धारणा में ले लें, ऐसा नहीं होना, उसको उसका प्रयोग करना है। अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य ज्ञान के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान, विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेक आकार रूप ज्ञान, वही ज्ञान वह अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध जीवों को स्वाद में आता है, मतलब उसका अनुभव उसको होता है भेद रूप ज्ञान का। मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, ऐसे अलग अलग ज्ञेय को मैं जानता हूँ, तो वो दूसरे पदार्थ के साथ आसक्ति से एकत्व को प्राप्त कर लेता है, तो उनको मिला हुआ ज्ञान अनुभव में आता है। क्या ज्ञान और ज्ञेय मिला हुआ अनुभव में आता है, मिश्र रूप में ने मिला हुआ अनुभव में आता है, एकला अनुभव में नहीं आता है, मिला हुआ अनुभव में आता है। एकला ज्ञेय भिन्न अनुभव में नहीं आता, एकला ज्ञान भी अनुभव में नहीं आता, दोनों मिला हुआ अनुभव में आता है। और दोनों मिलता नहीं, कभी ज्ञान नहीं कभी मिलता नहीं है, तो ज्ञान नहीं मिलता नहीं है फिर भी अनुभव हुआ ऐसा, तो ये मिथ्या अनुभव है, वो सच्चा अनुभव नहीं है, ये झूठा अनुभव है। हाँ, पर प्रवेश भाव हो जाता है। दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में उसको पर प्रवेश भाव कहा है कि मेरा ज्ञान पर में प्रवेश हो गया और पर पदार्थ मेरे में प्रवेश हो गया। जैसे कोई चीज देखने से अच्छी लगती है, इसका वर्ण, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाली चीज है इसका असर मेरे पर आ गया। जैसे वो चीज असर करती हो, ऐसे स्वाद लेने में जैसे जो पुद्गल का रस है, मीठा खट्टा जो भी है, वो जैसे आत्मा के प्रदेशों में उतर जाता हो, प्रवेश कर जाता हो, ऐसा लगता है। वास्तव में ऐसा बनता नहीं है, ज्ञान की कभी मिलता नहीं है, मिश्रण नहीं होता कभी। ये शब्द है वो ज्ञान में प्रवेशता है कि नहीं प्रवेशता है? शब्द का ज्ञान बिना प्रवेश होता है, शब्द का और ज्ञान में आपस में मिलना होता नहीं है, मिलता ही नहीं। शब्द के द्वारा ज्ञान नहीं होता है, ये बात इधर चलती है। शब्द के द्वारा ज्ञान होता है ऐसा अभी तक मानकर बहुत शब्द सुनने की प्रवृत्ति किया, हजारों ग्रंथ पढ़े और हजारों बात सुनी, लेकिन आत्मज्ञान हुआ नहीं। वह ज्ञान क्या सुनने से हुआ? गुरुदेव का प्रधान उपदेश वही था कि ज्ञान शास्त्र से नहीं होता, ज्ञान गुरु से नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से अपने आप होता है। ये तो प्रधान उपदेश था गुरुदेव का। गुरुदेव का उपदेश था मतलब समस्त जिनेन्द्रों का यही उपदेश है, सभी जिनेन्द्रों का यही उपदेश है। गुरुदेव ने प्रत्यक्ष सुनाया। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव, सामान्य ज्ञान वहां ढक जाता है। तिरोभाव होता है मतलब आच्छादित हो जाता है, वो विशेष ज्ञान इतना आविर्भूत होता है, उतना छा जाता है भाव में, कि वो जो सामान्य है वो तिरोभूत हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, विशेष के विशेष उतना छा जाता है कि सामान्य आच्छादित हो जाता है, ऐसा हो जाता है। दोनों दोनों में एक नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक के छा जाने से दूसरा आच्छादित हो जाता है, और एक ही पर्याय में दोनों होने से ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। तो अज्ञान कैसे होता है वो भी अज्ञानी को पता नहीं। क्या कैसे भ्रम होता है, कैसे अज्ञान होता है, उनको भी, इनको तो पता नहीं है। ये तो ज्ञानी पृथक्करण करके इनकी दशा को एनालिसिस करके समझाते हैं कि तेरी दशा में ऐसा हो रहा है। विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, विशेष के आविर्भाव मतलब विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान, उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। तो विशेष ज्ञान वह अज्ञानी गेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य ज्ञेयाकार के संयोग रहितता से उत्पन्न, देखो ये पर्याय है ना, इसलिए उत्पन्न कहा। सामान्य ज्ञान या द्रव्य नहीं है, इसका यही कारण है कि अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न, द्रव्य तो उत्पन्न नहीं होता, पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। जो विशेष का तिरोभाव हो जाए और सामान्य का आविर्भाव हुए, और उसमें बाद में जो ज्ञान अनुभव में आवे ऐसा अभेद रूप ज्ञान अज्ञानी को स्वाद में नहीं आता। ये तो अज्ञानी की बात चल रही है। फिर भी परमार्थ से विचार किया जाए तो, वास्तविक रूप से विचार किया जाए तो, जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। पर्याय दो नहीं है, पर्याय तो एक ही है, एक ही पर्याय है। जिस जो ज्ञान का अनुभव होता है उसमें दो ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान है जो सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आवे वही विशेष के अनुभव में आती है। अलुब्ध ज्ञानियों की तो क्या, अलुब्ध ज्ञानियों को तो कैसा होता है, जो ज्ञेयों में आसक्त नहीं है। ज्ञानियों के ज्ञान में भी ज्ञेयों का प्रतिबिंब तो होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी का ज्ञान में पर पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं आता, ऐसा तो बनता नहीं है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञानियों के ज्ञान में भी ज्ञेयों का प्रतिबिंब आता है, लेकिन वो उनको भिन्न जानता है, वहां अपनी पहुंच नहीं जानता है और उनको सुख बुद्धि वहां नहीं है, इसलिए वो आसक्त नहीं है, उसको कोई खिंचाव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। वो सभी ज्ञेय को फालतू जानता है, क्या अपने लिए निकम्मा जानता है। जो पदार्थ निकम्मा होता है उस पर कोई आसक्ति या कोई खिंचाव रहता नहीं है, वो तो सीधी साधी बात है। वो गुरुदेव कहते थे जैसे कोई ये कुत्ता और बिल्ली मर जाता है और फिर उस सड़ जाता है, उसका जो शरीर है वो सड़ जाता है तो कैसा लगता है, कि वो कोई ध्यान देने योग्य चीज नहीं लगती है। ऐसे जितने भी आसक्ति के पदार्थ है पंचेंद्रियों के, वो सभी की स्थिति ऐसी है। मरा हुआ कुत्ता सड़ा हुआ उसका जो शरीर ऐसा लगता है वो ऐसे कहते थे गुरुदेव, ज्ञानी को सब ऐसा लगता है। हाँ वो तो निश्चय हो गया ना, वो ऐसा ही है, ऐसा एक निश्चय हो गया तो निश्चय तो बदलता नहीं, हर समय चालू रहता, निर्णय बदलता क्या
नहीं,
निश्चय नहीं बदलता, हर समय ऐसा ही रहता है उनको। अलुप्त ज्ञानियों को ऐसा लिया ने, अलुप्त ज्ञानियों को तो परमार्थ से विचार किया जाए तो, अलुप्त ज्ञानियों को तो जैसे सिंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सिंधव का ही अनुभव किए जाने पर एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप स्वाद में आती है। अब देखे क्या शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, जो नमक है सिंधव में, नमक तो सिंधालुण कहते हैं ना, सिंध में होता है इसलिए सिंधालुण कहते हैं, सिंध के बॉर्डर में ये होता है ना, इसलिए उनको ऐसा जो नमक है वो उसका अन्य द्रव्य में डाला हुआ भी, साग में दाल में वो डाल दिया है फिर भी उनका व्यवच्छेद करके, क्या शब्द रखा, पहले तिरोभाव बोले थे, पहले क्या कहा था, तिरोभाव करके, अब कहते हैं कि उनका छेद कर दिया, अच्छी तरह छेद कर दिया, व्यवच्छेद मैंने अच्छी तरह ज्ञान में उसका संबंध को काट दिया, छेद कर दिया मतलब क्या किया, हाँ वो संबंध उसका कट गया, कोई संबंध रखा नहीं, ऐसा ऐसा एक परिणमन करते हैं, वो ज्ञानानुभूति कहने में आती है, उसी को ही आत्मानुभूति कहने में, उसी को ज्ञान मात्र का अनुभव कहते हैं। एक इला ज्ञान का अनुभव मैंने, ज्ञान मात्र का अनुभव है, वो द्वेष नहीं रहता है, उपेक्षा रहती है, क्या उपेक्षा रहती है, न राग रहता है न द्वेष रहता है, उपेक्षा रहती है, कोई ने अच्छा भी नहीं और के कोई ने बुरा भी नहीं। अच्छापन की भी कल्पना है और बुरापन भी की भी कल्पना है। उसमें घृणा आती है ना, वो तो एक थोड़ा आसक्ति तोड़ने के लिए बात है। वो बात तो आसक्ति तोड़ने के लिए कही जाती है। वास्तव में ऐसा द्वेष करने लायक कोई चीज नहीं है। सभी ज्ञान का ज्ञेय है। जितने भी पदार्थ हैं वो सभी ज्ञान का एक ही खाता है। उसका दो खाता नहीं, उसमें कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब ज्ञान का ज्ञेय है। भिन्न ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूँ। जैसा है उसमें है, मुझे कोई उससे संबंध नहीं है। मुझे कोई लाभ नहीं नुकसान नहीं, मुझे कोई उससे सुख भी नहीं दुख भी नहीं। ऐसा हाँ, पत्थर और सोना धूल और सोना समान है, ज्ञानियों को तो वो समान है, ऐसी बात है। लेकिन अवगुण और गुण समान नहीं है, सुख और दुख समान नहीं है, आत्मा और अनात्मा समान नहीं है, बाकी सब समान है। जगत के पदार्थ सब एक से है, एक जाति के हैं, पुद्गल जाति के हैं, इसलिए एक जाति के हैं। हाँ, वो भी ज्ञेय में जाते हैं। देव गुरु शास्त्र भी ज्ञेय है, वो भी अपना आत्मा नहीं है और इससे लाभ होता नहीं है। थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि हमारी मान्यता उल्टी हो रही है, उल्टी कर रखी है, इसलिए थोड़ा उसमें कठिन लगता है। लेकिन बात तो परिस्थिति तो स्थिति कोई बदलती नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी ऐसे कहते हैं। क्या है, ठीक है, चलो ये प्रश्न अच्छा निकला, एक विचार आता है इस पर कि वो यथार्थ रूप में करना है, फेंकना नहीं है इस बात को हमें। क्या कभी कभी हमारे यहाँ ये प्रश्न चलता है स्वाध्याय में कि देव गुरु शास्त्र को परद्रव्य कहेंगे, इससे लाभ नहीं है ऐसा कहेंगे, तो अविनय नहीं हो जाएगा? कि अविनय होगा भी और नहीं भी होगा। अगर हम हमारे आत्मा के आदर भाव में आकर के ये बात कहेंगे या विचार करेंगे तो अविनय नहीं होगा, और हमारे आत्मा की उपादेयता किए बिना ऐसी बात करेंगे तो अविनय हो जाएगा। ठीक, स्पष्टीकरण थोड़ा जरूरी है क्योंकि कई लोग फेंकते हैं ये बात सुन करके, ये देवगुरु शास्त्र परद्रव्य है ऐसा सुन लिया पढ़ लिया और फिर फेंकने लगते हैं। क्यों कि दुनिया में तो लोग देवगुरु शास्त्र को तो आदर करते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि मैं तो सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में है। क्या मेरी बात तो सुपीरियर है, देवगुरु शास्त्र भी परद्रव्य है। तो ऐसी बात करने पे ध्यान रखना है, क्या इस बात करते हमारे परम तत्व का आदर होता है? अगर आदर होता है तो बात सही है, यथार्थ है, यथार्थ तथ्य है, और ऐसा आदर नहीं होता है तो इसमें अपराध है, अविनय है, अविवेक है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा सामान्य अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। देवगुरु शास्त्र का अविनय हुए वो बहुत बड़ा अपराध है, सामान्य अपराध नहीं है। इसलिए वो बात में गंभीरता बहुत है। क्या इस बात में गंभीरता बहुत है, इसलिए श्रीमद जी ने तो ऐसे विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने तो ये बात कही है कि आत्मा जो सभी है वो मूल स्वरूप से तो सबों की आत्मा परमात्मा ही है, इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा मानना वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन यथातथ्य रूप में मानना ऐसे कि वो प्रकट होवे ऐसे मानना, और कहना तो उस भाव को आविर्भाव करने के लिए कहना है, परमात्म भाव को प्रकट करने के पुरुषार्थ में वो बात लेना, वरना लेना नहीं। अगर ऐसे लिया जाए कि परमात्मपना तो दिखे नहीं, प्रकट होवे नहीं, उस दिशा में कोई पुरुषार्थ होवे नहीं, और मैं परमात्मा मैं परमात्मा मैं परमात्मा ऐसा करने लगे, तो जो वास्तव में परमात्मा सर्वज्ञ वितराग पुरुष है उनका अविनय असातना हो जाएगी उसकी असातना हो जाएगी। क्यों? कि ये तो परमात्मा ऐसे थे तो उनकी असाधना हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसे होने का कोई प्रयास भी रहा नहीं, पर कहने लगा कि मैं परमात्मा, तो ऐसे मानने से तो वितराग सर्वज्ञ देव की असाधना होती है, अभिनय होता है, ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जहां तक ऐसा नहीं हो वहां तक इस विषय में जिज्ञासु रहना अच्छा है, ये बात है। बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है वो, तो ऐसी बात है। इसलिए जभी जभी, ये तो परम निश्चय की बात है ना, ये तो निश्चय तत्व की बात है, निश्चय स्वरूप की बात है, तो जहां जहां इस दृष्टांत के अनुसार जहां जहां निश्चय की बात करनी हो वहां निश्चय प्रति के झुकाव का प्रयास समेत करना, वैसे निश्चय की बात को जहां तहां फेंकना नहीं है, वरना अपराध हो जाएगा, ये बात है। आत्मस्वरूप के निश्चय होने में पत्रांक है 588, उसका हेडिंग तो बहुत सुंदर है, बहुत भाव ऐसा है, लल्लू जी को लिखा हुआ पत्र है। श्री जिन वितराग ने द्रव्य और भाव संयोग से बार बार छूटने की सूचना कही है और उस संयोग का विश्वास परम ज्ञानी को भी कर्तव्य नहीं है, मुनि भी नहीं करते, मुनि क्यों जंगल में रहते हैं कि ये कुटुंब परिवार का विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं, कुटुंब परिवार में अपने तो भिन्न पड़ गए ने, भिन्न हो गए ने, ऐसा नहीं रखते वो। क्या ये संयोग का विश्वास परम ज्ञानी भी को कर्तव्य नहीं है, ऐसा अखंड मार्ग श्री जिन वितराग ने कहा है। वैसे श्री जिन वितराग के चरण कमल के प्रति अत्यंत भक्ति से मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा करके वो पत्र लिखा है, पत्र का हेडिंग ऐसा रखा है। कहते हैं कि आत्मस्वरूप का निश्चय होने में जीव की अनादि से भूल हुई आई है। क्या है? आत्मा ऐसा है वैसा है ऐसा निश्चय करने का प्रसंग तो बहुत आया है, अनंत बार, लेकिन यथार्थ निश्चय कभी किया ही नहीं, उसने गलत निश्चय किया है, यथार्थ निश्चय किया ही नहीं। समस्त श्रुत ज्ञान स्वरूप ऐसा जो द्वादशांग है, समस्त श्रुत ज्ञान जिसमें समाविष्ट है 12 अंग में, उसमें सबसे प्रथम मैंने मुख्य उपदेश के योग्य ऐसा आचार अंग है। सबसे मुख्य क्या है? आचार अंग है, पहला आचार अंग है। 12 अंग में पहला अंग कौन सा लिखा? पहला आचार अंग है, तो मुख्य इसलिए पहले लिखा। गंधर्व देव ने आचार अंग को क्यों पहला लिखा? कि मुख्य है इसलिए लिखा। देखो कितनी नजर है, सुनमित जी की नजर कितनी है, उसमें प्रथम उपदेश के योग्य ऐसा आचारंग सूत्र है। उस आचारंग में भी प्रथम श्रुत स्कंद में पहले अधिकार में, प्रथम अध्ययन में पहले स्कंद के पहले अध्ययन में, प्रथम उद्देश्य में इसके पहले विभाग में, उद्देश्य मैंने जो उद्देश्य कहने का उद्देश्य हो, जो पहला कहने का उस प्रथम उद्देश्य में, प्रथम वाक्य में देखो कितनी नजर पहनी है इनकी, प्रथम अंग उसका, प्रथम श्रुत स्कंद उसका, प्रथम अध्ययन उसका, प्रथम उद्देश्य उसका, प्रथम वचन वो क्या है कि जो एकम जानई सो सबम जानई, ये प्रथम वचन है आचार्य का। क्या जो एक को जानता है वो सभी को जानता है, एकम जानई सो सबम जानई, उसके प्रथम वचन में श्री जिन ने उपदेश किया है वही उपदेश सर्व अंग का, बारह अंग का, सर्वश्रुत ज्ञान का सार स्वरूप है। एकम जानई सो सबम जानई वो बारह अंग का सार है, और गणधर देव ने इस बात को सबसे प्रथम लिखी। क्या ये बात को सबसे प्रथम लिखी, इतनी प्रधानता दिया, क्या ये क्रीम निकाल दिया, बारह अंग का सार मैंने बारह अंग का मक्खन निकाल करके पहले वचन में रखा है गंधर देव ने। कहने का अभिप्राय बहुत अच्छा है इधर कि वचन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही गंभीर है, उसको एक गंभीरता से कभी नहीं लेना, ये कहने का अभिप्राय है यहाँ। ये श्रुत ज्ञान का सार स्वरूप है, मोक्ष का बीज स्वरूप है। क्या एक को जान लिया तो उसको मोक्ष होने वाला है और है। जिसने आत्मा को जाना इसका मोक्ष अल्पकाल में हो ही जाएगा, वो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया, उसका सिद्धालय में रिजर्वेशन हो गया। ये मोक्ष का बीजभूत है, सम्यक्त्व स्वरूप है, वहीं सम्यक्त्व पैदा होता है, आत्मा को जानने से ही सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है, ये सम्यक्त्व स्वरूप है। उस वचन के प्रति उपयोग स्थिर होने से, क्या आप कहते हैं, बहुत सुंदर बात किया इधर, इस उपयोग इस वचन के प्रति उपयोग स्थिर होने से जीव को एक ऐसा निश्चय आएगा, देखो, कि ज्ञानी पुरुष के समागम की उपासना बिना जीव स्वच्छंद के स्वच्छंद से निश्चय कर ले वह छूटने का मार्ग नहीं है। कहाँ ले आए बात को, है बात को घुमा के कहाँ ले आए, कि जिसको यथा तथ्य स्वरूप का निश्चय करना है, स्वरूप का ज्ञान करना है, और एक को जानता है वो सर्व को जानता है, बारह अंग का सार है, तो एक को जानने के लिए क्या करना, कि ज्ञानी पुरुष का समागम की उपासना करना, यही निर्निश्चय में आएगा। वो जी कहाँ आएगा, ज्ञानी पुरुष के समागम की उपासना करने के निश्चय में वो आएगा, स्वरूप निश्चय करने में उसका ये निश्चय हो जाएगा। इसके बिना स्वच्छंद से अपने आप में स्वरूप का निश्चय करने जाऊंगा ये मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है, ये छूटने का मार्ग नहीं मिलेगा।
निर्वाण दर्शन में दिया
ऐसे सत्शास्त्र में, सत्शास्त्र के वांछन से, सिद्धांत शास्त्र के वांछन से, श्रवण से, सिद्धांत का निश्चय जो करने में आता है तो उस करने में कोई बाधा नहीं है। सिद्धांत शास्त्रों से स्वरूप का निश्चय, आत्मस्वरूप का जैसी व्यवस्था है, उनके सिद्धांत है द्रव्यानुयोग के, ऐसा निश्चय करने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी क्या, उसके बावजूद भी ज्ञानी पुरुष का समागम उपासना से सिद्धांत का निश्चय किए बिना आत्म विरोध होना संभवित है, विपर्यास होने की संभावना है। क्या शास्त्र में तो ये बात आएगी कि देव गुरु शास्त्र पर द्रव्य है, लेकिन ये बात तुम ज्ञानी पुरुष से पहले समझो। तुम ज्ञानी पुरुष के चरण में बैठोगे, इसका विनय आएगा, देव गुरु शास्त्र का विनय आएगा, आत्मा की उपासना होगी सिद्धांत के माध्यम से, तब विप्रयास नहीं होगा। वरना सीधा करने का जाओगे तो विप्रयास हो जाएगा, आत्मविरोध होने का संभव है। जब ही काम होता है, इसलिए आत्मा का परमात्मपणा मानना असत्य नहीं है क्या, और देव गुरु शास्त्र को परद्रव्य मानना असत्य नहीं है, फिर भी ऐसा स्वरूप यथा तथ्य प्रकट नहीं होवे, वहां तक जिज्ञासु रहना ये अच्छा है, और उस जिज्ञासु रहने से, उस रास्ते से यथार्थ परमात्म दशा प्रकट होगी, परमात्मपणा प्रकट होगा, और ऐसा मार्ग ग्रहण के बिना इस आत्म पद का परमात्म पद का भान किसी को नहीं होता है। इसलिए बिना भान हुए ऐसा परद्रव्य और स्वद्रव्य की बात करने लग जाएगा तो वितराग सर्वण पुरुषों के असातना रूप करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, ये बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए स्वद्रव्य स्वद्रव्य है, परद्रव्य परद्रव्य है, इसमें कोई मतभेद नहीं होने पर भी इसकी यथार्थता आवश्यक है, बिना यथार्थता ये बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है, गंभीरता है विषय की, वो ख्याल में रखना चाहिए। ये व्यवच्छेद से बात चली, तो व्यवच्छेद में देवगुरु शास्त्र का व्यवच्छेद की बात चल गई ना, ये बात है, उतनी अपेक्षा रखने की बात है। यहाँ तो बिल्कुल स्वानुभूति का ही प्रकरण चलता है, तो जो अपना परम स्वरूप को ज्ञान सामान्य के माध्यम से आविर्भूत करता है उनके लिए तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयास बिना, लक्ष्य तो पड़ा है हमारी अनुकूलता पर, हमारी प्रतिकूलता पर, थोड़ी भी हमें अनुकूलता प्रतिकूलता आवे तो स्वद्रव्य परद्रव्य का विकल्प ही नहीं आता है क्या? सब बात सुनी हुई धारणा वाली छूट जाती है, तो उनके लिए तो जिज्ञासु रहना वही अच्छा है, जिज्ञासा में रहना। हाँ, जिज्ञासा में रहने में मतलब क्या है कि जो जिज्ञासा में नहीं रहता है वो काल्पनिक निश्चय कर लेता है क्या, पर उसमें परमात्मपणा प्रकट नहीं होता, उसमें परमात्मपणा प्रकट तो नहीं होता, पर बात तो फेंक देता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा, दूसरे परमात्मा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करके। तो ज्ञानी तो सबसे परमात्मा का अंतिम गुण स्थान है, और ज्ञानी तो पहले गुण स्थान में है, मोक्ष मार्ग के चतुर्थ गुण स्थान मैंने प्रारंभ का गुण स्थान है, पहला गुण स्थान है मोक्ष मार्ग का। उनके समागम ने, समागम की उपासना ऐसा शब्द लिया है क्या, बहुत बहुमान से विनय से उसके चरण में बैठ करके सुने तो फिर ज्ञानी का इतना भी नहीं करे, पहले गुण स्थान वाले का तो अंतिम गुण स्थान वाले का तो कितना भी नहीं होवे, कि उसका तो बहुत भी नहीं होवे, तो उसको अविनय होने की गुंजाइश नहीं रहती, उनको अविवेक नहीं होगा, अविनय नहीं होगा, ऐसी बात है एक बात। दूसरा, जिज्ञासु में रहने से वो बात कैसी है, किस प्रकार से है, वो जिज्ञासा का स्वरूप है, तो उसमें मैं परमात्मा हूं ऐसा गलत निश्चय नहीं आएगा, वो तो किस प्रकार से परमात्मापना प्रकट करना, उस जिज्ञासा में यथार्थ विधि को जान करके वो प्रकट करेगा, और जान करके प्रकट करेगा तो उनको ये अविवेक और अपराध नहीं होगा, ये बात है। विचक्षणता बहुत है, प्रतिपादन की विचक्षणता बहुत है। कितनी सावधानी रखिए कि हम जानते हैं कि आत्मा का परमात्म स्वरूप से प्रतिपादन करना ये 12 अंग का सार है, और इसलिए तो गंधर्व देव ने प्रथम अंग में ही, आचार अंग में ही उसका पहला वचन लिया है। लेकिन इसकी गंभीरता भी सबसे अधिक है, ये गंभीरता नहीं समझे तो बहुत उल्टी बात हो जाएगी, पूरी की पूरी उल्टी बात हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा। ये विधि का विषय भी इसलिए जरूरी है कि आत्मा है सो परमात्मा है, लेकिन किस विधि से अनुभव करना, इसका अनुभव किस विधि से करना है तो सही। द्रव्य तो पर्याय रहित है, लेकिन पर्याय रहित है ऐसा जाने कैसे, आत्मा है सो परमात्मा लेकिन जाने कैसे, क्योंकि हमारा अन्य पदार्थों से मिश्रित रूप विशेष ज्ञान का आविर्भाव चल रहा है, तो उसको व्यवच्छेद कैसे करें, सामान्य का आविर्भाव कैसे करें, ये प्रयोग कैसे करें। तो अपने ज्ञान में ऐसा शांति से अवलोकन करना चाहिए कि ज्ञान सामान्य क्या है, कैसा है, क्या विशेष न्याकार के का दुर्लक्ष करके सामान्य क्या है, उस उद्देश्य से पहले ज्ञान में तलाश करनी पड़ती है। ये बात रही प्रयोग की, कि अपने ज्ञान में अनेक न्याकार तो प्रतिभासित हो ही रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारा ज्ञान सामान्य क्या है कैसा है इस जिज्ञासावश इस उद्देश्यवश देखना है, तलाश करना है, अंतर में खोज करनी है, वो खोज करने से मिलता है, बिना खोज मिलता नहीं है। तो ये जो प्रयोग वाली बात है उस पर ध्यान देना है, सिर्फ ये गाथा और टीका का अर्थघटन क्या है वो शब्दार्थ हो जाएगा, अर्थघटन में तो शब्दार्थ हो जाएगा, अधिक बुद्धि होगी तो भावार्थ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बिना प्रयोग इसका रहस्यार्थ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ी ये बात हमें सोचनी चाहिए, सत्संग में विचार करना चाहिए कि प्रयोग कैसे होता है। आज तो अपना समय खत्म होता है, कल थोड़ा इस बात को विस्तार से लेंगे। गुरुवार को शाम को इसी को लेने में तो क्या है, आज शाम को इसी को रख लेंगे, रख लेंगे कोई बात।
આજે બપોરે અને કાલે બપોરે ધર્મચર્ચા છે, સત્સંગ છે, સવારે આવતીકાલે સવારે પણ પ્રવચન ચાલુ રહેશે, ગુરુવારે છે પણ, અને સાંજે પણ પ્રવચન ચાલુ રહેશે, દરેક કાર્યક્રમ ચાલુ રહેશે આજે.